أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والذين دنا فتدلى أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعد الفرج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعني نور الله، أذن الله، يد الله، حبل الله، عروة الوثقى، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرجا.
بحق زہرا و بحق زہرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات اللہم محمد وعجل فرجا. ہم نفس کی طہارت کے اوپر یہ اشرا پڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ مجلس میں بھی میں نے امام حسین کے اس جملے سے شروعات کی تھی کہ الناس عبید الدنیا، اتلے یعنی کہ یہ دنیا جو ہے وہ دنیا کی محبت میں، یہ دنیا کے پیچھے اور دنیا کی محبت میں تم لوگ بھاگے چلے جا رہے ہو. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بارہا اس جملے کو ادا کیا ہے. دنیا کی محبت بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہماری موت بے ایمان ہو جاتی ہے. عزتان زہرا آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کہ جن کے بہترین دوست کہ جب ان کی موت کا وقت آیا، ساتھ میں مدرسہ پڑھا، سب ساتھ کیا، آغا خمینی کے بہترین دوست تھے، پتہ ہی نہیں چلا. اور جب نزا کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، اس وقت کیا ہوا؟ آغا نے کہا کلمہ پڑھو، کہا نہیں پڑھوں گا. آغا نے پھر اصرار کیا کہ کلمہ شہادت ہے پڑھو، نزا کا وقت ہے، کہا نہیں، میں تیرے ساتھ مدرسے میں پڑھا، سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، پھر بھی تمہیں اتنی شہرت ملی اور مجھے نہیں ملی. حسد کھا گئی، ساری عبادتوں کو کھا گئی، بے ایمان دنیا سے چلے گئے. مجتہد کے ساتھ پڑھے ہوئے مدرسے میں دوست. بہت ضروری ہے کہ میں فکر کروں. میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ذکر حسین ہے اور ایک فکر حسین ہے. آج میں ولایت کے اوپر تھوڑا سا پڑھوں گی. آغا صدر الدین قزوینی، ان کی کتاب ریاض القدس، جس کے اندر وہ یہ روایت کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، جب رسول اللہ معراج پر گئے تو سب سے پہلے امام جعفر سادی کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کے بارے میں سوال کیا، جس میں جنت کی نہروں کا، جنت کی چار نہروں کا ذکر ہے. اور اس کے متعلق جب سوال کیا تو امام جعفر صادق نے کہا کہ میں وہی جواب دوں گا جو میرے جد رسول اللہ نے جواب دیا اس کی تفسیر کے بارے میں. اور پھر امام جعفر صادق نے رسول کے جملوں کو دہرایا، کہا جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے اور معراج میں جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے اور وہاں پر رسول اللہ کہتے کہ میں نے جنت میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت قسم کی چار نہروں کو ایک ساتھ بہتا ہوا دیکھا. جب میں نے جنت میں یہ چار نہروں کو ایک ساتھ بہتا ہوا دیکھا تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ اے میرے اخی، میرے بھائی جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ نہریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ ان کو میں پوری جنت میں گھومتا ہوا، پھر ہر جگہ جنت کے چاروں طرف میں جہاں سے گزر رہا ہوں اس نہر کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ نہریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ حضرت جبریل ابھی جواب دینے ہی والے تھے، جبریل نے کوئی جواب، جبریل کہنے کے یا رسول اللہ ان نہروں کو تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، कि अचानक से दूसरा फरिश्ता रसूलुल्लाह कहते हैं नाजिल हुआ कि जिसके पूरे जिस्म पर बालों पर थे, और वो फरिश्ता मुझे उसने मुझे सलाम किया और कहा, उसने कहा या रसूलुल्लाह, खुदावंद मुताल आपको सलाम कहता है। और फिर उसने कहा कि या रसूलुल्लाह ऊपर की तरफ देखें। जब रसूलुल्लाह ने ऊपर नजर की तो रसूल ने कहा कि सब्ज नूर का एक कुब्बा था और वो हवा में मुअल्लिक था, ना उसको ऊपर से कोई चीज पकड़ रही थी ना उसको नीचे से कोई चीज सपोर्ट कर रही थी, हवा में मुअल्लिक था वो कुब्बा। फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि उस फरिश्ते ने मुझे इसमें इस कुब्बे की तरफ इशारा किया कि या रसूलुल्लाह ये नहरें यहां से बह रही हैं, ये नहरें इस कुब्बे से बह रही हैं। और फिर उसके एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद ऊपर, एक दुरूद पढ़ दीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु।
मेरी आवाज अब सही से आ रही है या कम आ रही है? गालिबन दुरुस्त आ रही मेरी आवाज? आवाज सही साफ आ रही
जी माशा
कर ले, बाकी आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
अच्छा तो मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा यहाँ और कर देती हूँ, अब मेरी आवाज सही आ रही होगी क्योंकि मैंने मैक्सिमम में वॉल्यूम को रख दिया। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद ऊपर,
अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व
अज्जिल फरजहु।
तो वो नूर के कुब्बे की तरफ उस फरिश्ते ने इशारा किया और रसूलुल्लाह को उस तरफ बुलाया और रसूलुल्लाह उस नूर के कुब्बे की जानिब चल पड़े। अब एक मरतबा उस पर उस कुब्बे पर एक कुफल दरवाजा था और उस दरवाजे में एक बहुत बड़ा कुफल लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। तो एक मरतबा रसूल अल्लाह ने उस कुफल को हाथ में, उस ताले को हाथ में लिया और लेकर रसूल ने कहा उस फरिश्ते की तरफ देखकर कि इसकी चाबी क्या है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूल अल्लाह इसकी चाबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। जब कोई भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है तो ये कुब्बा, ये ताला खुल जाता है, ये कुफल खुल जाता है और रसूल अल्लाह के मुंह से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह की तिलावत जारी हुई और वो ताला खुल गया। वो जब ताला खुला उसके बाद अंदर रसूल अल्लाह ने कहा, जब मैंने देखा तो ये चारों नहरें बह रही थी, एक दूध की थी, एक पानी की थी, एक तहूर जन्नत की थी और एक शराब, शराब एक शराब की थी तहूर जन्नत और एक शहद की नहर थी, ये चारों नहरें बह रही थी। और रसूल अल्लाह ने कहा इस नहर के जहां से ये बह रही थी उसके ऊपर ये जो चार 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 सुनहरी अल्फाजों में चार लफ्ज लिखे हुए थे, बिस्म अल्लाह रहमान और रहीम, यानी कि बिस्म अल्लाह रहमान रहीम। और यहाँ रसूल अल्लाह कहते हैं कि ये वो नहरें हैं जो जन्नत के चारों तरफ बह रही हैं। और फिर रसूल अल्लाह कहते हैं कि जब मैंने ये नजारा देखा तो मुझे परवरदिगार आलम की निदा आई खुदावंद मुताल की और खुदावंद ताला ने कहा या मोहम्मद ये आबे कौसर या नहरे कौसर है जिसका खालिक मैं हूं, जिसके मालिक आप हैं, जिसके साकी अमीरुल मोमिन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और इसके पीने वाले अली के चाहने वाले अली के शिया हैं। तो यहां पर रसूल अल्लाह ने क्या जुमला अदा किया, अली का शिया। अजीजान ये मैं कहूं कि मैं अली की मानने वाली हूं इसमें लज्जत नहीं है, मैं पहले भी कह चुकी, मैं गुज़िश्ता मजलिस में भी कह चुकी, बड़ी बात तब है कि जब अली कहे कि ये मेरी मानने वाली है। और वो कब होगा? वो तब ही होगा कि जब मैं जहाद अकबर करूंगी। जहाद अकबर मेरे नफ्स का जहाद है अजीजा निमन। बहुत जरूरी है कि मैं अपने नफ्स, मैं अभी शेख अब्बास कुम्मी की और मैं पहले भी अर्ज कर गई हूँ, कनाडा में भी मैं मेरे ख्याल में गालिबा अर्ज करके चली गई हूँ कि शेख अब्बास कुम्मी कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। ये वो हस्ती है कि जो हरम में एक दफा रात के अंधेरे में जा रहे थे तो दो तालिबे इल्मों देखा था कि उस जमाने में जब रोशनियां थी ही नहीं हरम में, उस जमाने में जबकि सहन नहीं थे बड़े बड़े हरम के, चरागों का दौर था जब चराग जलते थे, लोग चरागों से तालिबा मुताल किताबें पढ़ते थे और सब करते थे, उस वक्त में ये दो तालिबे इल्मों ने देखा कि दूर से एक रोशनी चमक रही है कम हो रही है, चमक रही है कम हो रही है। ये दोनों घबरा गए और घबरा कर जब नजदीक गए तो क्या देखा, वो शेख अब्बास कुम्मी थे कि जिनके जिस्म से रोशनी निकल रही थी और बुझ रही थी, रोशनी निकल रही थी और बुझ रही थी। और जब सवाल किया कि आगा हम ये क्या देख रहे हैं, तो शेख अब्बास कुम्मी ने जवाब दिया कि जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तिलावत करता हूँ तो मेरे जिस्म से रोशनी निकलती है, मेरे जिस्म से रोशनी निकलती है। इतना बड़ा उन्होंने असाधारण। शेख अब्बास कुम्मी की किताब हम सब जानते हैं, मफातिहुल जिना, जिसके माने हैं जन्नत की चाबियां, द की ऑफ द जो है वो जन्नत, जन्नत की चाबियां। इसमें मैं एक रिवायत पढ़ रही थी अमीरुल मोमिनीन की, इमाम जाफर सादिक से रिवायत।
सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज।
तो ज़ियारत आशूरा के बाब में है और उसमें ज़ियारत के आदाब बता रहे हैं, और फिर उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि इमाम जाफर सादिक ने कहा कि हमारे जद अमीरुल मोमिनीन ने इराक के रहवासियों से कहा कि ए इराकियों, मैंने सुना है कि तुम्हारी औरतें जो हैं वो नामहरमों से हंस हंस के बातें करती हैं। तो मौला ने इस रिवायत को कंटिन्यू किया और मौला ने कहा वाए हो ऐसी औरतों पर, और फिर मौला ने कहा कि आखिरी जमाने की जो औरतें होंगी वो नामहरमों से हंस हंस के बातें करेंगी और नाम और ऐसे ऐसे गुनाह और हराम काम करेंगी, अमीरुल मोमिन कह रहे हैं, और फिर उन्हें सही जानेंगी, यानी कि उनको इतनी भी अवेयर और फिक्र नहीं होगी कि वो गुनाह कर रही हैं, गुनाह को वो हलाल और अच्छा समझ के करेंगी। और फिर मौला के जुमले इसमें आखिरी जुमले बहुत सख्त, जिस पे अगर फिक्र की जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी तब्दील हो सकती है। अजीजाने मन, आखिरी जुमलों में अमीरुल मोमिन क्या इरशाद फरमाते हैं कि वो औरतें फितना अंगेज होंगी, गुनाहों में खुशी और लज्जत महसूस करती होंगी, उनके दिल लुभते होंगे गुनाहों में, और वो गुनाहों को अच्छा समझ के करती होंगी, और ऐसी औरतें आखिरी जुमला मौला का क्या है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगी। इससे मुझे और आपको फिक्र करनी है कि मुझे किस ग्रोह में रहना है, मुझे जहन्नुम में जाना है या मुझे जन। मैं पहले भी अर्ज कर गई, ये हक और बातिल की एक जंग है, जो जिहाद अकबर है, जो नफ्स का जिहाद है, उसमें हक और बातिल की जंग है। मुझे डिसाइड करना है कि मैं किसके खैमे में हूँ, मैं माविया के खैमे में हूँ, उमर साद के खैमे में हूँ, या मैं इमाम हुसैन के खैमे में हूँ, ये मैं डिसाइड करूंगी। आपको पता है रे की हुकूमत के लिए इन लोगों ने इतनी इमाम हुसैन जैसी शख्सियत को रोते रोते, ये लोग रो रहे थे, ये इकरार कर रहे थे कि हम गलत कर रहे हैं, नबी के नबी के नवासे को कत्ल कर रहे, मगर कर रहे थे। हुब्बुद्दुनिया गड़ गई थी, क्योंकि दुनिया की लालच आ गई थी। किसी भी चीज को मोहब्बत करो, मगर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत और इमाम क्या कहते हैं, खुदा के लिए करो उससे मोहब्बत। जो खुदा के लिए उस चीज से मोहब्बत नहीं, तो फिर इसे छोड़ दो। जब तुम उसके अंदर बिल्कुल ये महसूस करो कि यहां मैं शिर्क में आ रही हूं, या मेरी मोहब्बत जो है वो खुदा से अजीम हो रही, तो फिर उस मोहब्बत को छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि उससे दूरी खुदा से नजदीकी करेगी, खुदा और इमाम से मेरी नजदीकी करेगी। जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इमाम जमाना से मेरा राबता नहीं है, अगर इमाम जमाना से मेरा दिन में एक दफा, मैं बोलती हूँ, बातचीत नहीं है मेरी, भले मैं मानती हूँ मेरे कान गुनेगार है, मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि मैं इमाम से बोलूंगी तो मुझे जवाब नहीं आ रहा तो मौला मुझसे बात नहीं करे, बिल्कुल मैं गलत हूँ यार, बिल्कुल गलत हूँ। मैं इमाम से बात करूंगी तो भले मुझे जवाब नहीं आ रहा, मगर इमाम मेरी बात को सुन रहे हैं, राबता रहना चाहिए, मेरी रूह अहले बैत से नजदीक रहनी चाहिए। जो मेरी रूह अहले बैत के नजदीक नहीं है, तो मैं अपने जमाने के इमाम के लश्कर में शामिल नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे जिहाद करना पड़ेगा। जो चीज मुझे नहीं करना पसंद है वो मुझे करनी पड़ेगी, इमाम के लिए, अल्लाह के लिए, अहले बैत के लिए, ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो बहुत जरूरी है कि मैं अपनी जिंदगी में एक तब्दीली लेकर आऊं। मैं आज 41 इयर्स की हूं, तो मुझे ये सोचना है कि 41 इयर्स में मैं हर साल 2.5 महीना मुहर्रम कर रही हूं। इस 2.5 महीने, तो ये साल पहला साल है कि जिसमें इम्तहान आया हर मोमिन का। यहाँ पर मोमिन, मैंने कहा ना तन्हाई की इबादत भी काउंट हो रही है, कि तन्हाई में कौन इमाम हुसैन को याद कर रहा है। आज हम तन्हा हैं, आज कोई नहीं है हमारे पास, हम सब अपने घरों में आजादारी कर रहे हैं, मगर कौन इमाम हुसैन को पकड़ के बैठा है, क्या मैं दुनिया में इतनी बिजी हूँ, मैं अपनी लाइफ टाइम में इतनी बिजी हूँ, अपनी जॉब्स में इतनी बिजी हूँ कि मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन से दिन है। क्योंकि इमाम बारगाह में मजलिस नहीं है, क्योंकि 90% दुनिया में इमाम बारगाह में मजलिस नहीं हो रही। अब वो इमाम बारगाह था तो एक लाइफ रूटीन बन चुका था कि मुझे रोज इमाम बारगाह जाना है। अब वो भले एक साइड पे रख दे उसको, तो कि मैं किस नियत से जा रही थी, मैं किस लिए जा रही थी, वो तो मैं ही जानती हूँ कि मैं रियाकारी के लिए जा रही थी, मैं लोगों के मुंह पे जा रही थी कि उसकी मल्लिस से, उसकी मल्लिस से, उसकी मल्लिस से, या मैं हुसैन की मल्लिस में जा रही थी। ये तो मेरा एक अलग वो, मैं ये तो मेरी रूह कैसी है, वो मेरी कितनी ताहिर रूह है वो उस पर डिपेंड करता है ना, वो तो एक अलग ही चीज रख दे। मगर मैं इतनी मजलिसों में गई, और अगर आज तक मैं मेरी 41 ईयर्स की जिंदगी को सोचूं, तो 41 ईयर्स की जिंदगी में अगर मैंने मुहर्रम में चलो 10 दिन भी मैं गिनूं, काउंट करूं, तो 10 दिन में एक एक मजलिस में मैं अगर एक मैसेज भी नहीं ले रही हूँ, और वो अपनी जिंदगी में मैं उसको अप्लाइड नहीं कर रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं? क्या मजलिसों में जाना, क्या हुसैन, क्या खाली समझाने के लिए जुमले को मैं यूज कर रही हूँ नाउजुबिल्ला, क्या इमाम हुसैन की जिस्म, जख्मी जिस्म को रोने के लिए मैं जा रही हूँ फकत? तो मैं मौला को और एक नया जख्म दे रही हूँ हर मजलिस में जाकर, कि मेरे अंदर जो तब्दीली नहीं है। इमाम हुसैन कह रहे हैं मैंने इतना, मैंने अपने पूरा कुनबा लुटा दिया, किसके लिए? मौला के जुमले क्या थे? मौला के जुमले सिर्फ ये थे कि उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं, उम्मत की इस्लाह के लिए मैं अली असगर को कुर्बान कर दूंगा। तो ये क्या इमाम हुसैन इसलिए गए थे कि मैं मजलिसों में जाऊं और मजलिस से मैं सलावत पढ़ के, मजलिस से सुन के, जोर जोर से मातम करके मैं आ जाऊं और मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली ना हो? मुझे ये सोचना है कि अभी आज जितने भी मैं जाविये देखती हूँ ऑनलाइन टीवी में, वो मुर्तजा जैदी, सारे बड़े बड़े उर्फा, उनके मुंह से निकल रहा है, जहूर की डेट को तायुन करना हराम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को तैयार नहीं करूं, ये नहीं बोला है किसी भी मान में। पूरी आप बिहार उठा लें, 12वीं जिल्द 800 पेज की मैंने पढ़ी, उसमें कहीं भी मैंने ये नहीं पढ़ा कि इमाम ने ये बोला हो कि तुम लोग अपने आप को तैयार मत करो, कि बस जहूर नहीं तो बस बैठ जाओ। मुझे मेरे मामे जमाने के लिए तैयार करना, मुझे मेरी औलाद जब पैदा होती तो किसके लिए होती? ये औलाद की तरबियत क्यों बोला है वाजिब है? क्यों नमाज और कुरान की तरह औलाद की तरबियत वाजिब है, रोज नमाज रोजे की तरह औलाद की तरबियत क्यों वाजिब है? इसीलिए कि इमाम जमाने के लिए तैयार करना है, मुझे मेरे बेटे को इमाम के सामने पेश करना है। अगर मेरी औलाद की तरबियत मैं इमाम जमाने के लश्कर में शामिल होने के लिए नहीं करूंगी, तो फिर मुझे इमाम को जवाब देना है, मुझे इसको, मुझे इसका जवाब इमाम जमाना को बिल्कुल देना है कि मैं आज मेरे बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, दुनिया की बड़ी से बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री और हार्ट सर्जन और बड़े बड़े बड़ा बड़ा डॉक्टर बना रही, दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बना रही हूँ, जो के फकत अभी मौत आ जाए, अभी मेरे बेटे को मौत आ जाएगी अगर मेरा बेटा मर गया, तो सिर्फ और सिर्फ वो डिग्री, इतनी बड़ी डिग्री जो मेरे बेटे ने ली, पूरी जिंदगी खत्म करके बड़ी बड़ी तनख्वाह पे काम कर रहा है, और जो मौत आ गई तो वो सिर्फ वो ये जमीन और नीचे कब्र, यहाँ तक के फासले में वो डिग्री खत्म। मेरा बेटा जो कब, मैं जो कब्र के अंदर जाऊँ, मैं मेरी मिसाल ले लूँ, चलिए मेरे बेटे का नाम ना लूँ, मेरी अपनी मिसाल, मैं अगर बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं दुनियावी लिहाज से बहुत ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ या सारी डिग्रियां मेरे पास भी हैं, क्यों मैं सबसे ज्यादा कामयाब हूँ, अगर मैं बहुत बड़ी साइंटिस्ट भी हूँ, तो भी वो सिर्फ यहीं तक रहेगा। अगर मुझे मौत आ जाएगी और मैं मनो मट्टी के नीचे जाऊंगी, तो वो जो डिग्री दुनिया की, डॉक्टरेट, इंजीनियर, वो मुझे नीचे कोई नहीं मांगेगा, नीचे कोई ये नहीं बोलेगा कि परवीन तुमने डॉक्टरी किया नहीं की, परवीन तुमने इंजीनियरिंग की या नहीं की, परवीन तुमने वो साइंस के बड़े साइंटिस्ट बनी या नहीं बनी, ये कोई नहीं मांगे। नीचे क्या डिग्री मांगी जाएगी मुझसे? फकत फकत और फकत विलायत की मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन मेरे अंदर कितनी थी, और मोहब्बत का मतलब सिर्फ फकत ये है अजीजान मन, माजरत के साथ, मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये कि मैं जोर जोर से नारे लगाऊं, और मैंने अमीर अल मोमिनीन को मेरी एक ड्रीम दुनिया में, अक्सर मैं अमेरिका कनाडा साइड पे पढ़ती हूँ, मुझे पता है एक एक फैंटेसी में जी रहे हैं हम लोग, एक अमीर उल मोमिनीन एक बादशाह, क्योंकि हमने रिवायत नहीं पढ़ी है। अगर हमने रिवायत पढ़ी तो हमें पता चले कि अमीर उल मोमिनीन किस तरह दुनिया में जिंदगी जी के गए हैं। आपने सुना है ना कि एक सहाबी कह रहे थे, बुजुर्ग हो गए, कह रहे मैं बहुत छोटा था तो मैं, मेरे फादर मुझे कंधे पे बिठाकर खलीफा की, खलीफा वक्त की वो खुतबा दे रहे थे, और हम उसमें खलीफा वक्त के खुदे में हम गए तो हमने देखा खलीफा वक्त अपने हाथ के सीने हाथ को बार बार झटक रहा है, अपने दामन को झटक रहा है। तो मैंने अपने बाप से सवाल किया कि बाबा ये क्यों अपने दामन को बार बार झटक रहे हैं? तो बाबा ने कहा बेटा ये इनके पास एक ही लिबास है, वो अमीरुल मोमिनीन जिसको हमने एक अपनी फैंटेसी दुनिया में एक बादशाह, वो बिल्कुल है बादशाह मगर आखिर वो किस तरह जी के गए दुनिया में, एक ही लिबास था जो गीला था। मौला अली गीले लिबास को पहने हुए थे और आस्तीनों को झटक रहे थे हवा में कि वो पानी से सूख जाए। और हम आपने अगर रिवायत पढ़ी हो तो रिवायत के जुमले हैं, सलमान फारसी बीबी सैयदा की चादर को देखकर फूट फूट कर जारो कतार रोने लगे थे और रसूल आए तो सलमान क्यों रो रहे हो? कहा बीबी की तो सर बीबी फातिमा तो जरा मुस्कुरा के कहती बाबा सलमान मेरी चादर को देखकर रो रहे हैं, अगर ये मेरा सोने का बिस्तर देख लेंगे तो ये और गिरिया करने लगेंगे। क्या था वो बिस्तर? वो एक छोटी सी खाल थी ऊंट की सूखी हुई जिसके ऊपर बीबी और अहले बैत सोते थे और रात में और दिन में उस पर उनके जो जानवर थे उसको चारा उसको घास डाल के खिलाई जाती थी, फीड करते थे जानवर उसी उसी बिस्तर पर। इस तरह जिंदगी जी के गए हैं। अभी अगर जो मैं जाविया देख रही हूँ करंटली उसमें उसके हिसाब से इमाम जमाना जहूर कर जाएंगे तो मैं कहाँ आऊंगी? मैं इतनी आराम पसंद हूं, मैं इतनी आसाइश पसंद हूं, मुझे जिंदगी में दुनिया जहान की सारी फैसिलिटीज चाहिए। इमाम जमाना आके सिर्फ मुझसे ये कहेंगे परवीन पत्थर पे सोना है बाहर सड़क पे, क्या कहूंगी मैं मानूंगी? मैं कहाँ हूं? मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे चैन नहीं आएगा। मामा जवान कह सख्ती में सफर करना है, मैं कहा हूं? मैंने तो पूरी मैं तो फौरन मौला को बोलूंगी मौला पूरी जिंदगी लगा दी घर को बनाने में, मर्सिडीज का गाड़ियां खरीदने में, आसाइश की सवारियां खरीदने में, ये छोड़ के आप कह रहे मैं आपके साथ आ जाऊं? तो कहा हूं मैं? क्या है मेरे अंदर? मोहब्बत दुनिया हुब्बत दुनिया गड़ गई है। वो दिल दिल में मैंने कहा ना एक वो कल्ब की आंख मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हदीस से आपके सामने पेश की थी, वो कल्ब की आंख के ऊपर मैंने इतनी गुनाहों की गर्द जमा दी है तो वो बंद हो गई अंधेरे में, कैसे साफ होगी वो? नफ्स का जहाद मैं कैसे करूंगी? नफ्स का जहाद कैसे करूंगी अजीजा ने मन? वक्त इतनी तेजी से जा रहा है, मुझे बहुत सारे मैसेज देने थे मगर रह गए। खाली मैं सूरह बनी इसराइल सूरह इब्राहिम की 25 और 26 आयत को आज मैं आपकी समातों की नजर करना चाह रही थी कि उसमें अल्लाह सुबहान तआला ने शजरे तैबा और शजरे खबीसा का जिक्र किया है। शजरे तैबा इस पे हम कल तफसील से इंशाअल्लाह लजीद ये दो आयतों पे कल इस पर हम चर्चा करेंगे मगर आज फकत मैं एक क्योंकि ये अय्याम अज़ा हैं और इमाम ज़माना का जिक्र जो मैं नहीं करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दो जिक्र ऐसे हैं एक अमीरुल मोमिनीन का और एक इमाम ज़माना का जो करते रहना चाहिए जिससे हमारी महफिलों में नूर भी आए और हुज्जत खुदा का जिक्र ज़रूरी भी है। तो आयतुल्ला मेहदीपुर आगा मेहदीपुर क्योंकि नफ्स का जहाद नफ्स की तहारत पे हमारी गुफ्तगू है तो ये लोग जो हैं मुश्तहिदीन ये बेहतरीन हमारे लिए आइडियल्स हैं कि इन लोगों की जिंदगी किस तरह से गुजर रही है और हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम इनसे सीखें। तो आयतुल्ला मेहदीपुर के बारे में मिलता है कि इनसे एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि आगा 30 साल हो गए आपकी जिंदगी में लोगों ने देखा कि हमेशा आपने इमाम जमाना का जिक्र किया और इमाम जमाना के ऊपर लिखा, तो इसके मुतालिक जब इनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इसका जवाब दिया कि एक दिन मैंने ख्वाब में हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन और حضرت حمزہ اور جعفر طیار کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہم تمام مجتہدین کی ایک قطار ایک لمبی سی کیو لگی ہوئی ہے, ایک لائن لگی ہوئی ہے اور سب کو حمزہ اور جعفر طیار جو ہیں وہ پیپر پہ کچھ لکھ کر مارکس دے رہے ہیں. تو مہدی پور کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی اتنی مکمل گزاری تھی کہ مجھے تھا کہ مجھے بہت زیادہ مارکس ملیں گے. تو کہتے ہیں جب میری باری آئی تو ان لوگوں نے مجھے 60 مارکس دیے 100 میں سے. تو میں دیکھ کر بہت ہی افسردہ ہو گیا کیونکہ ایکسپیکٹیشن تھی زیادہ, تو ان کا میری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی. ایک مرتبہ میں پریشان ہوا اور رسول خدا اور امیر المومنین کے پاس جا کے میں نے شکایت کی. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو 100 ملنے چاہیے تھے اور مجھے 60 مارکس دیے. تو ایک مرتبہ امیر المومنین کی طرف رسول اللہ مسکرا کے دیکھنے لگے اور کہا کہ مہدی پور جنہوں نے تمہیں نمبر دیے ہیں انہی سے جا کر اس کی وجہ پوچھو. تو مہدی پور آئے جناب حمزہ کے پاس اور جعفر طیار کے پاس اور کہا کہ مجھے تو زیادہ کی امید تھی, آپ نے مجھے صرف 60 دیے. تو فوراً جناب حمزہ نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا میں نے تو اپنی پوری زندگی میری پوری کوشش رہی کہ میں اہل بیت کا ذکر کرتا رہوں اور میری زندگی پوری میں نے اہل بیت کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کی. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں قربانی دے رہے ہیں, تو شکوا کرنے کا بھی حق بنتا ہے. میں اور آپ جائیں تو مجھے تو لگتا ہے ایسی لائن میں کھڑی تو مجھے ایک نمبر کی بھی امید نہیں ہے عزیزان من, کیونکہ زندگی میں جتنی میں قربانیاں دوں گی اتنی میں اہل بیت سے نزدیک ہوں گی, اتنی خدا کے نزدیک میری بلندیاں ہوں گی, ورنہ کچھ نہیں. میں نے جو دیکھے ہمارے پروفیسر ایک چیز کہتے ہیں کہ تلوار جو آپ تلوار ہوتی ہے نا جنگ کی, وہ ایک میان میں ایک تلوار رہ سکتی ہے, ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں رہ سکتی. یہ مثال بہت بہترین مثال ہے کہ ایک ہی میان ہو اس میں دو تلواریں دنیا اور آخرت کبھی نہیں رہ سکتی. مجھے ایک کی قربانی دینی ضرور دینی پڑے گی. بھلے اللہ نے اگر مجھے آسائشیں دی بھی ہیں تو مجھے ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کر کے یہ سوچنا چاہیے پروردگار عالم تیری نعمت ہے, تو نے دی ہیں اور مجھے اتنی توفیق دے کہ میں ان کا صحیح استعمال کر سکوں, کم از کم مجھے اتنا شکر. میں نے پہلی مثال کیا دی میری مجلس کی شروع میں, آیت اللہ خمینی کے بہترین دوست کا کیا حال ہوا, موت کس پہ ہوئی, بے ایمان. اتنا علم جاننے کی بات یہ بہت ضروری تھا. آگے مہدی پور کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ کی امید تھی, تو انہوں نے کہا کہ زیادہ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ آپ نے بہت ذکر کیا سب کیا مگر آپ نے اپنے وقت کے امام کا ذکر کبھی نہیں کیا محفلوں میں. اور آگا مہدی پور کہتے ہیں اس دن جب میری آنکھ کھلی اس دن سے میں نے ایک وعدہ کیا کہ جب بھی مجلس پڑھوں گا جب بھی کچھ لکھوں گا امام زمانہ کو فراموش کبھی نہیں کروں گا. اور اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں آج 30 سال ہو گئے, اس 30 سال کی زندگی میں میں نے ہمیشہ مجلس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور آخری حصہ میں نے امام زمانہ کے لیے رکھا ہے. عمر اتنی رسیدہ تھی کہ پوتے وہ 90 ایئرس سے بھی ابو تھے اور اکثر ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہیں مجلسوں کے لیے بلایا جاتا تھا تو کبھی بھی گاڑی ان کو بھیجی جاتی تھی لینے کے لیے تو گاڑی میں نہیں جاتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں میں بس سے آؤں گا, میرے گھر کے پاس ہی بس ملتی ہے. میرے گھر کے پاس اتنی بزرگی میں بھی زحمت کر کے جاتے تھے امام حسین کی اداکاری کے لیے. آج ہم یہاں پر اپنی اس گفتگو کو تمام کریں گے اور اب کیونکہ حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہے تو ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا, جب پاکستان انڈیا الگ نہیں ہوا تھا, ہندوستان تھا آزاد نہیں تھا اور انگریزوں کی قید میں تھا, انگریز لوگ آئے ہوئے تھے, برٹش گورنمنٹ آئی ہوئی تھی اور اس وقت ایک سپاہی تھا, وہ سپاہی جو تھا وہ محب اہل بیت تھا. تو اس سپاہی کی عادت تھی کہ جب بھی عاشور کا دن آتا تھا وہ دودھ کی سبیل کرتا تھا امام حسین علیہ السلام کو. اور جب انگریزوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو اس کا جاب بھی لے لی, اس کو بہت قید کیا, مارا پیٹا और सब कुछ उसका इख्तियार ले लिया, फिर उसको छोड़ दिया मार पीट के। जब वो वापस घर आया तो अपनी जोजा से उसने कहा कि आज जो है वो इमाम हुसैन का दिन है, रोजे आशुरा है और मुझे सबील करनी है, दूध की सबील। उसने रोजा ने कहा घर में तो खाने को भी कुछ नहीं, तो उसने कहा बस ठीक है चलो सबील तो हर साल करते हैं, तो इस साल हम पानी की सबील कर देंगे। पानी में तुम थोड़ी सी शुगर डाल दो, चीनी डाल दो, पानी को मीठा कर दो, हम पानी की सबील करेंगे। अब क्योंकि सब जानते थे पूरा इलाका कि ये दूध की सबील करता है, तो इसने पानी की सबील लगाई, तो लोग आए तो सही, पानी थोड़ा सा पी के सब ऐसे सबील को छोड़ के चले गए, और सबों ने कहा कि दूध की सबील नहीं, सब चले गए। सब चले गए तो इसने बहुत गिरिया किया, बहुत रोया कि इस बार इमाम हुसैन ने मेरी नजर को कबूल नहीं किया, और रोने लगा, बहुत रोया। रात को भी सबील को अंदर ले लिया, अपने घर में रख लिया, इसने कहा सबील को घर में रख लो, घर में ले आए घर के सहन। जब रात का एक पहर गुजरा तो उसके घर में दस्तक हुई, तो उसने देखा, दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कुछ अरबी लिबास में बहुत सारे लोग हैं। तो क्योंकि हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान का लिबास अलग होता है, तो वो पहचान गया कि ये अरबी लोग हैं। तो उसने कहा भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा हम मुसाफिर हैं, हमें पानी पीना है, पानी पिलाओगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल पिलाऊंगा। तो वो सबील जो इमाम हुसैन की थी, इसने मेरी से ज्यादा से जल्दी लेकर आओ, इसे सबको पिलाई, और वो सारी सबील खत्म हो गई। और वो जो काफले का सालार था वो जाने लगा था, इसने बाजी पकड़ के कहा भाई मैंने तुम जैसे लोगों को कभी आने देखा, इतने नूरानी चेहरे, मुझे फकत इतना बता दो तुम लोग कौन हो। तो जिसका हाथ पकड़ा हुआ था वो कहते हैं मैं हबीब इब्ने मजाहिर हूँ। और ये पूरा इमाम हुसैन का लश्कर है जिसको तुम। तो वो रोने लगा, उसने कहा मौला ने मेरी सबील को कबूल कर लिया। उसने कहा मौला ने हमें हुक्म दिया कि जाकर मेरे उस चाहने वाले की सबील भी कराओ। अजीजानी मन, जो सच्ची मोहब्बत मेरे दिल में हो तो इमाम और अहले बैत खुद आके अब जाहिर करते हैं। एक खातून का वाक्य मिलता है कि मजलिस करती थी, बहुत ही गरीब थी, मजलिस करती थी अपने घर, और उसके घर लोग नहीं आते थे, औरतें नहीं आती थी, बड़ी बड़ी वो अफसरदा होती थी क्योंकि बहुत गरीब थी, इतनी गरीब थी कि घर में बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं था, तो लोग नहीं आते थे मजलिस में। तो एक मरतबा मुहर्रम आया, बहुत अफसरदा होती थी, चार दो चार तीन चार औरतें होती थी हमारे से होती थी। तो एक मरतबा जब पहली मुहर्रम आई वो बहुत अफसरदा थी कि इस साल मेरे घर में कोई नहीं आएगा, तो दरवाजे में दक्कुल बाब हुआ, चंदी भी आई और उसमें से एक ज़ईफ़ा बीबी थी, उन्होंने कहा कि आप हम आपके घर मजलिस में आ सकते हैं। बहुत सारा ग्रुप था, इसने बुलाया, बहुत ताज़ीम से बिठाए। 9 दिन तक वो कहती है कि इस बीबी ने इतनी खिदमत की सबकी, और जब ही रोती थी तो ऐसा होता था कि दोनों दीवार रो रहे हैं इनके साथ मसाले। लेकिन जब आशुरा आने लगा तो 9 को जब वो जाने लगी तो बीबी ने कहा मैं कल तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर देना। तो ये ज़ईफ़ा खातून अफसरदा होकर रो के कहती है कि क्यों नहीं आएंगे आपके आने से, तो इतनी रौनक है। तो बीबी कहने लगी कि कल रोजे आशूरा है, मेरे बेटे की शहादत, करबला जाओ। हज़रत ज़हरा जब करबला के मैदान में लश्कर पे लश्कर आने लगे तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को बुलाया और बुला के कहा भैया कौन आ रहा है, इतने घोड़ों की आवाज आ रही है। तो मौला कहते हैं है, मौला नाम देते जा रहे थे। एक मतलब जनाब जनाब बहुत अफसरदा हो गए, कहा भैया आपका भी कोई हो मुझे बुला लीजिए। एक मरतबा इमाम हुसैन कहने लगे जनाब किसको बुलाऊं? तो जनाब जनाब ने कहा भैया हबीब को बुला ले। एक मरतबा खत लिखा हबीब इब्ने मजाहिर को, दो रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत मिलती है कि हबीब को खत लिखा तब हबीब जो थे अपने घर में खाना तनावुल फरमा रहे थे, और दूसरी रिवायत मिलती है कि जनाब हबीब जो थे वो खिजाब की दुकान पर खिजाब खरीद रहे थे। जब इमाम हुसैन का खत मिला एक मरतबा चूमा, चूम कर खोला खत को पढ़ा, और शॉर्ट करूंगी रिवायत को, और जनाब हबीब जो है वो जो घोड़े को देकर गुलाम को कहा, कुफे के हालात बहुत ही मुतगैर हैं, बहुत ही खतरनाक है। आधी रात के पहर घोड़े से कहा, गुलाम से कहा कि तू रात के पहर में जो है मेरा कुफे के बाहर इंतजार करना, अभी एक मरतबा जनाब हबीब को थोड़ी सी देर हो गई आने में। तो वो गुलाम कहने लगा घोड़े से कि तू फिक्र मत कर, अगर मेरा आका नहीं आएगा तो मैं तुझ पे सवार होके जाऊंगा हुसैन की नुसरत के लिए। एक मरतबा हबीब रोने लगे, रोकर गिरिया किया और कहा, मौला कैसा वक्त आ गया है आप पर कि कोई आपकी मदद के लिए आने को तैयार नहीं। मतलब हबीब पहुंचे, इमाम हुसैन ने सबको तलवार और नेजा जो है वो दिया, और एक मरतबा एक नेजे को इमाम हुसैन ने कोने में रख दिया। तो हजरत अब्बास कहते हैं, मौला ये नेजा किसका है? कहा, अब्बास थोड़ा सा सब्र करो, ये नेजा अभी मैं दूंगा जिसको देना है। एक मरतबा घोड़े की आवाज आने लगी, मौला ने कहा, अब्बास जाओ जाओ, हबीब आए हैं, हबीब का एहतराम करो, हबीब को वेलकम करो। एक मरतबा जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के लिए अली अकबर दौड़े, हजरत अब्बास दौड़े, और तकबीरों की आवाज बुलंद हुई। जब तकबीरों की आवाज बुलंद हुई तो जनाब ज़ैनब ने कहा, फिजा ये क्यों तकबीरों की आवाजें बुलंद हो रही हैं, आप कौन आया है जाके देखो। एक मरतबा जनाब फिजा बाहर निकली, जब देखा तो कहा कि बीबी हबीब आए हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन हबीब के इस्तकबाल के लिए गले से लगाया। एक मरतबा आकाजादी ने, शहजादी ने कहा कि फिजा जाकर हबीब को मेरा सलाम कहो। अब जनाब फिजा जब खैमे से बाहर आई है और हबीब इब्ने मज़ाहिर को सलाम कहा है, आकाजादी शहजादी तुम्हें सलाम कहती है, एक मरतबा हबीब ने सरो सीना पीटा और रो के सात बीवियों को भी लेकर आ गए, जबकि मालूम था कि यहाँ शहादत होने वाली है। मौला तड़प गए, गले से लगाए, कहा हबीब ये मसलहत है खुदा थी कि ज़ैनब का आना जरूरी है। हबीब बहुत बुजुर्ग थे, रिवायत उनके जुमले के जनाबे हबीब की बहुएं जो थी वो नीचे, जनाबे हबीब ने यहाँ पर पट्टा बांधा अपनी बहुओं को चला और एक मरतबा कहा, मौला मुझे जंग की इजाजत दीजिए। मौला ने कहा, हबीब हबीब तुम बहुत ज़ईफ़ हो, जाओगे तुम जंग कर नहीं पाओगे। एक मरतबा हबीब ने इसरार किया, मौला ने कहा, हबीब जाओ तुम्हें इजाजत दी। जनाबे हबीब ने जंग की, अब बुजुर्गी थी मैदान में ज्यादा जंग नहीं कर पाए। जब घोड़े से नीचे आए तो सलाम किया, कहा मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। एक मरतबा मौला ने अब्बास की तरफ नजर की, कहा अब्बास हबीब हमको छोड़ के जा रहे हैं। एक मरतबा अबुल अब्बास ने दामन को हाथ बाजुओं को थामा, कहा मौला चले हबीब के पास चलते हैं। एक मरतबा घोड़े पर सवार हुए, मैदान करबला हो रहा है, इमाम हुसैन जनाब हबीब के सर को अपने सर पर रखा, अपनी अपने जानों पर रखा। एक मरतबा हजरत हबीब ने सर को हटा दिया। जब तीन मरतबा मौला ने इस तरह किया, हबीब ने तीनों मरतबा अपने सर को हटा दिया। मौला ने कहा, हबीब हमसे कोई खता हो गई, क्यों सर नहीं रखते? एक मरतबा हबीब ने कहा, मौला मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी मैं ये जसारत किस तरह करूं कि जब आपका आखिरी वक्त होगा तो आपका सर खाके करबला पे होगा, मौला मैं सर को किस तरह आपकी गोद में रख दूं? एक मरतबा मौला ने हबीब के सर को अपनी गोद में रखा और कहा, हबीब तुम फिक्र मत करो, जब मेरी शहादत का वक्त आएगा तो मेरा सर मेरी माँ की जानों पे होगा, मेरा सर मेरी माँ के गोद में होगा। अल्लाह लानतुल्लाह अला अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन फ़सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन कलबियन कलबियन मा तमिल हुसैन।
Ya Hussein, 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 Ya Hussein,